الصفا وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان والو، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اس آیت مبارکہ میں ایک تو ذکر کا حکم دیا اور ساتھ اس کی مقدار کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کثرت سے ذکر کرو. کثرت کا لفظ عام طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی کام آدھے سے زیادہ ہو. مثلا گلاس آدھے سے زیادہ بھرا ہوا ہو تو اکثر حصہ اس کا پانی سے بھرا ہوا کہیں گے. تو ذکر کی کثرت سے مراد یہ کہ انسان کی زندگی کا بیشتر وقت یاد الہی میں گزرے، تھوڑا وقت غفلت میں گزرے. جبکہ ذکر کے معاملے میں ہمارا حال بالکل الٹ ہے. آج کے سالک کو بھی اگر اوراد وظائف کے لیے کہیں تو وہ پانچ منٹ کا مراقبہ کرتا ہے. اب جاگنے کا ٹائم انسان کا کم از کم 16 گھنٹے کا ہوتا ہے، میکسیمم 8 گھنٹے آپ نیند ضروریات کے لگا لیں. تو اگر 16 گھنٹے جاگنے کا ٹائم ہے تو اس میں پھر 8 گھنٹے تو حضور قلب کے ساتھ گزرے کم از کم. 8 گھنٹے تو نہیں گزرتے وقوف قلبی کے ساتھ، ذکر کے ساتھ. تو ہم اگر دیکھیں تو یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہوتا، اتنا تھوڑا ہوتا ہے. اب اتنے تھوڑے ذکر کے اثرات کیسے مرتب ہوں بندے پر؟ یوں سمجھیں کہ اگر 24 گھنٹے کوئی موبائل فون استعمال ہو اور اس کے بعد اس کو 24 منٹ کے لیے چارجنگ پہ لگانا پڑے ہر دن کے بعد، اور ہم 24 منٹ کی بجائے 1 منٹ اس کو لگا دیں تو اس کی تو چارجنگ پراپر نہیں ہوگی. ہم تو اس حساب سے اپنا اتنا وقت بھی ذکر میں نہیں لگاتے. ہماری اکابر اور اسلاف کو گھنٹوں مصلے پہ وقت گزارنے کی عادت تھی، اور ہمیں گھنٹوں گپوں میں گزارنے کی عادت ہے. جب ہم گپے مارنے بیٹھتے ہیں ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا. آپ اگر غور کریں لاہور کراچی کے ماحول میں عشاء سے لے کے 12 بجے تک کا وقت تو ویسے ہی جاگنے میں گزر جاتا ہے. 12 بجے کے بعد سیریس ہوتے ہیں کہ اب سونے کی تیاری شروع کرنی ہے. कोई 12 बजे सोया, कोई 1 बजे सोया। ऐसी फैमिलीज भी हैं जो 2-2 बजे 3-3 बजे सोती हैं। अब उस फैमिली में एक बंदा भी उठ के फजर पढ़ने वाला मुश्किल से होता है, किस्मत से कोई हुआ तो हुआ, वरना फजर ही नहीं पढ़ता। और जिनके मिजाज बिगड़े हुए हैं और दुनिया ही के तालिब हैं और आखिरत की तरफ उनका ध्यान ही नहीं, वो लोग 3-4 बजे सोने के आदमी। 3-4 बजे जब तहज्जुद के मांगने का वक्त होता है, वो उनके सोने का वक्त शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला कैसे महरूम कर देता है उस बरकत वाले वक्त से, उनको जागने भी नहीं देता। ये बंदे के बस की बात नहीं है तहज्जुद में जागना। हर आदमी सोचता है जी कि मैं नहीं जागता, तुझे जागने नहीं दिया जाता, तुझे इस मौके पे सुला दिया जाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं, जाओ मेरे फलां फलां बंदों को पर मार के जगाओ, और जाओ फलां फलां बंदे मुझे नापसंद हैं उनके सर पे पहरा दो, उनकी आंख न खुलने पाए। अब ये सोचने वाली बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मौके पे हमारे सर पे भी पहरा होता हो कि आंख ही न खुले। तो हम सोच रहे हैं ना जी कि हम नहीं जागते, हकीकत हाल अल्लाह जानता है। ये तो ऐसा ही है कि एक बंदा सोचे मैं नहीं जागता, और एक सोचने का ये भी अंदाज है कि ये मकबूल बंदों के उठने का वक्त है, अल्लाह ताला इस वक्त में मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। होता है ना जब इंसान अपने दोस्तों में हो, खुश मूड में हो, अब उस वक्त में कोई नापसंदीदा शख्स आए तो बंदे को देखने से ही कराहत होती है। हमने देखा शादी ब्याह के मौके पर नौजवान बच्चे, तो जी आज हम सारी रात जागेंगे जी, हमने जी फैसला कर लिया हम सारी रात जागेंगे। वो सारी रात जागने का अजम करने वाले जहां रात के 3 बजे सबसे मोए पड़े होते हैं, होश ही नहीं होती। तो मजाक है सुबह 3 बजे से लेकर फजर तक जागना, ये औलिया की सिफत है। अगर फुसाक इस तरह आसानी से इस वक्त में जाग लेते तो फिर खुदा के कानून के लिए नेकी और बुरी बुराई में क्या फर्क होता, यहां पता चलता है। दिन अल्लाह की रजा के साथ गुजारेगा तो वो जो दरबार लगने का टाइम है ना, उस वक्त खुद ब खुद हाजिरी नसीब हो जाएगी। रात के आखिरी पहर में कुदरत का दरबार लगता है। हदीस पाक में आते हैं, अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पे नजूर करती है। एक फरिश्ता निदा देता है, हल मिन साइलिन फअउतियला, है कोई सवाल करने वाला जिसको अता कर दिया जाए। ये वन विंडो ऑपरेशन, कायनात का वन विंडो ऑपरेशन, ये वन विंडो खुल जाती है। है कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने वाला, आओ भाई तुम्हारी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी जाए, आओ तुम्हें अप्रूवल दी जाती है। और एप्लीकेशन देने वाले बिस्तर पे पड़े होते हैं, होश ही नहीं होती। अरे हज की दरखास्तों का टाइम गुजर जाए तो वो कोई कबूल नहीं करता कि जी टाइम गुजर गया। तो जब ये वक्त हम गुजार बैठे तो सुबह उठ के हम फिर कहें या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, टाइम तो हमने गुजार दिया, हमने तो विंडो खोली थी, हमने तो अनाउंसमेंट भी करवाई थी। एक मरतबा सफर के दौरान एक एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, सिक्योरिटी चेक भी बहुत आजकल टाइम लेते हैं। हम लोग अपनी फ्लाइट से 2 घंटे पहले चेक इन हो चुके, जब सिक्योरिटी लाइन में आए तो अल्लाह ताला की शान के वहां टाइम खूब लग रहा था। हमसे पहले एक अमेरिकन लड़की थी, उसको उन्होंने कहा कि जी हम आपके सारे बैग चेक करेंगे, हैंड बैगेज। वो अड़ गई कि जी मेरा इतना मुश्किल से पैक हुआ सामान है, मैं तो नहीं खोलती। सिक्योरिटी वालों ने कहा जी आपको खोलना पड़ेगा। वो लाओवाली उम्र थी, कहने लगी मैं नहीं खोलती, और सिक्योरिटी वालों ने लाइन बंद कर दी और उनको खड़ा कर दिया। अच्छा जी खड़ी रहो। अब हम उसके पीछे, उसका सामान चेक हो तो हम आगे बढ़े। उस लड़की का सामान चेक होते होते फड्डा ऐसा पड़ा, घंटा लग गया। सिक्योरिटी वालों को क्या फिक्र है कि फ्लाइट है या नहीं है। वो कहने लगे इट्स नॉट आवर बिजनेस कि आपकी फ्लाइट कितने बजे है, हमारा बिजनेस यह है कि आप क्लियर पैसेंजर हैं तो हम जाने देंगे, जब तक तसल्ली नहीं होगी हम खड़ा रखेंगे। फंस गए हम। नतीजा क्या निकला कि उधर हमारी फ्लाइट अनाउंस हो रही है, हत्ता के लिए उन्होंने नाम अनाउंस करने शुरू कर दिए कि पैसेंजर फलां, पैसेंजर फलां, पैसेंजर फलां। ये सारे के सारे जल्दी से दरवाजे पर पहुंच जाएं, फ्लाइट जा रही है। अब हम सुन भी रहे हैं लेकिन आगे बढ़ भी नहीं सकते कि कदम रुके हुए। जब उन्होंने हमें क्लियर किया तो हमारे सामने अनाउंसमेंट हुई कि दिस इज लास्ट कॉल फॉर पैसेंजर फ्लां एंड फ्लां, आ जाओ। अब हम सिक्योरिटी चेक में से गुजरे और हमने सामान अपना लेटा, हम भागे भागे जो गए तो उस विंडो पर पहुंचने से पहले जो लड़की वहां खड़ी थी उसने पेपर पे साइन करके फ्लाइट क्लोज करके उनको पकड़ा दी थी, और उन्होंने आगे कैप्टन को वो पेपर दे के दरवाजे बंद कर दिए। अब फ्लाइट का ये कानून है कि एक दफा उसको क्लोज कर देना तो फिर जल्दी रीओपन नहीं होती। एक मिनट का मुश्किल से फर्क पड़ा होगा, बल्कि मुझे तो लगता है कि जब उसने साइन किए होंगे तो हम उसके नजर के सामने ही होंगे, इतना ही फासला होगा चंद कदम का। जैसे ही उस वक्त पहुंचे हम तो मैंने उसे कहा जी कि मैं आ चुका हूं। उन्होंने कहा जी सॉरी। जी हमने जाना है। उन्होंने कहा जी अब हम आपको नेक्स्ट फ्लाइट पे भेज सकते हैं, ये हम हमदर्दी कर सकते हैं कि उस पर सीट है या नहीं, हम आपको जरूर बोर्ड कर दें। ये फ्लाइट जा चुकी। उस वक्त मुझे वक्त की अहमियत का एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात एक मिनट भी इंसान का काउंट किया करता है, 1 मिनट। उसने कहा वेरी सॉरी, मैं बहुत अफसोस करती हूं कि विदाउट एनी प्रॉब्लम और आपकी मिस्टेक के आपको फ्लाइट से ऑफलोड होना पड़ा, या आप फ्लाइट न, अब सामान हमारा उस पर जा रहा है, चेक इन तो हो चुका था, हम पीछे खड़े। 1 मिनट की ताखीर ने हमें फ्लाइट पे नहीं जाना। मैं उस दिन बैठ के सोचता रहा या अल्लाह ये दुनिया के मामलात हैं तो 1 मिनट की ताखीर, हम हाजिर नहीं हुए अपने वक्त पे, वी नेवर शोड अप इन टाइम, और इन्होंने हमें जवाब दे दिया। ए मालिक तेरी अनाउंसमेंट हर रात होती है, हल मिन साइलिन फौती अल्लाह, आता ही कोई नहीं, मुसल्ले के करीब नहीं आते, बिस्तर पे पड़े हैं, तो फिर वहां का कानून क्या होगा। इसलिए हम समझे इस मामले को, इसलिए एक बुजुर्ग थे तो जब तहज्जुद का वक्त होता तो उनकी बीवी उनको जगाती, कहती उठो रात के काफले जा रहे हैं, रात के काफले जा रहे हैं। यानी रात को जो रहमतें तकसीम करने वाला अमला उतरता है वो अब अपनी लिस्ट फाइनल करके जा रहा है। अब ये वन विंडो ऑपरेशन, फिर नेक्स्ट नाइट खुलेगा। अब नेक्स्ट डे जब होता है हम चाहते हैं कि वो वन विंडो ऑपरेशन अभी हो, वो हमें रूटीन की लाइन में डाल देते हैं। वो जी स्पेशल विंडो जो खुली थी ना, वो तो फलां टाइम था। अच्छा आप अब फजर के बाद दुआ मांग रहे हैं, चले आप उस दरवाजे से आ जाए। अब इतना लंबा दरवाजा, इतना सा फर्क है हमारी जिंदगी में और औलिया की जिंदगी। हम तहज्जुद का एहतमाम नहीं करते तो हमें नॉर्मल रूटीन के दरवाजे पर डाल दिए जाते हैं। जाओ भाई बड़ी लाइन में खड़े हो जाओ। एक मरतबा हमने किसी मुल्क में जाना था तो उस मुल्क का एक बड़ा अहम आदमी था, उसने लेटर भी लिखा था इनविटेशन का। अल्लाह ताला की शान के जब वह वीजा लगवाने के लिए वहां पहुंचे तो कोई 200-250 बंदों की लाइन थी। हम बड़े परेशान कि या अल्लाह ये 250 बंदे जो अपना काम मुकम्मल करेंगे तो हमें तो शीशा हो जाएगी। लेकिन एप्लीकेशन जब गई तो उन्होंने क्या किया कि विंडोज तो बहुत सारी होती हैं, उन्होंने कलैद विंडो खोल के वहां से अनाउंसमेंट कर दी एप्लीकेंट फलां एंड फलां वो इस विंडो पे आ जाए। हम सबसे आखिर पे थे, उस विंडो पे उन्होंने बुलाया, डॉक्यूमेंट तो वो देख ही चुके थे। उन्होंने इतनी बात की जी अपना पासपोर्ट दे, हमने पासपोर्ट दे दिया जी आप 3 बजे पासपोर्ट ले जाए। 1 मिनट में वो विंडो बंद कर दी, हम लोग वापस आ गए। मैंने अपने दोस्तों को कहा भाई आज एक मसला समझ में आया, यही तहज्जुद में पढ़ने वाले में और न पढ़ने वाले में फर्क होता है कि तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए वे वन विंडो ऑपरेशन, आओ मुसल्ले में उसी वक्त तुम्हारा पासपोर्ट लेके तुम्हें वीजा दे देंगे, जाओ 1 मिनट में फारिग। और अगर दिन के आम औकात में उठ के आओगे, अच्छा भाई 200 बंदों के पीछे जाके खड़े हो जाओ, ये 200 तुमसे पहले आए हैं, पहले इनकी सुनेंगे बाद में तुम्हारी सुनेंगे। तो हम तहज्जुद के वक्त की अहमियत को पहचाने। दुनिया का कोई ऐसा वली नहीं कि तहज्जुद की पाबंदी के बगैर उसे विलायत का मकाम मिल गया। मन तलब अलउला सहर अल्लयाली, बुलंदियां जो चाहेगा उसे रातों को जागना होगा। जो चाहेगा कि मेरे दिल की हालत ठीक हो जाए, मेरे दिल का आईना दुरुस्त हो जाए, साफ हो जाए, तो उसे मुराकबों में बैठना पड़ेगा। आजकल के सालिकीन चाहते हैं कि मुराकबे भी पीर करे, दुआएं भी पीर करे, सारा कुछ पीर करे और काम हमारा संभले। ठीक है, पीर की दुआएं पुष्ट पनाही करती हैं, पीर की दुआओं से अल्लाह ताला इंसान की हालत को बदलता है, सब कुछ ठीक है, मगर उस बंदे को खुद भी तो फिक्र होनी चाहिए ना अपनी। हर मामले में तो साईं सुस्त गवाह चुस्त यूं तो नहीं ना होता, तो हमें खुद भी चाहिए कि हम तहज्जुद की पाबंदी करें और कसरत से जिक्र करें। कसरत से जिक्र यह है कि चलते फिरते लेटे बैठे अल्लाह की याद अपने दिल में बसाएं, तो यह कसरत से जिक्र फिर हमारे लिए अक्सीर साबित होगी। वरना होता क्या है कि शुरू में बड़े शौक जज्बे के साथ आते हैं, बैठ होते हैं, मामूलात न करने की वजह से फिर एक मुकाम पे खड़े हो जाते हैं। अब गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो घड़ी हो जाएगी। ये रोज के वराद वजायफ तो सालिक का रूहानी पेट्रोल है, नहीं डालेंगे तो रूहानी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। सालिक को चाहिए कि कसरत जिक्र को अपनाए हत्ता के दिल की गिरा खुल जाए, कसरत जिक्र को अपनाए हत्ता के दिल की गिरा खुल जाए। इतना जिक्र करे, इतना जिक्र करे कि दिल बेदार हो जाए, ये इब्तिदा है। और इसकी इंतहा यह है कि सालिक इतना जिक्र करे कि अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाए। सालिक इतना जिक्र करे कि अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिन पर ऐ शैतान तेरा हरगिज काबू नहीं चलेगा। जिस सालिक ने अपने जिक्र को इस नुक्ते तक पहुंचा दिया कि अल्लाह ताला की हिफाजत में आ गया, इसका ईमान बच गया। इस मकाम तक हर बंदे को अपने आप को रूहानी तौर पर पहुंचाना ये लाजिम है, वरना ईमान हर वक्त खतरे में, कोई भी गिर सकता है, किसी वक्त गिर सकता है। एक चींटी जो दीवार के ऊपर चढ़ रही हो वो हर वक्त गिरने के चांसेस मौजूद है, जब तक कि वो छत पर नहीं पहुंच जाती। जब छत पर पहुंच गई अब वो गिर नहीं सकती। तो रूहानी दुनिया में यही हाल समझ लीजिए कि सालिक उस दीवार पर चढ़ने वाली चींटी की माने लिया, किसी वक्त गिर सकता है, जब तक कि अल्लाह ताला की हिफाजत के उस वादे में शामिल नहीं हो जाता। और ये हिफाजत का वादा तब होता है जब फिना और जकाम मुकम्मल होती है। तो जिक्र को इस नुक्ते तक पहुंचाएं हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हिफाजत नसीब हो जाए, फिर काम आसान है। तो इसलिए ये एक बामकसद जिंदगी है। कह देना जी मैं आज जिक्र नहीं कर सका, मैं जी आज तहज्जुद नहीं पढ़ सका, मैं जी आज तस्बीहात नहीं कर सका, जी वकूफ कल भी तो मुझसे होता नहीं, मराकबा करना मुझे आता नहीं। भाई अगर होता कुछ नहीं तो फिर मिलेगा भी कुछ नहीं। हमारे मशाइख ने कहा, मल्ला विरद लहू ला वारिद लहू, जो अपने औराद वज़ाइफ नहीं करेगा उसको कोई और कैफियत नहीं मिलेंगी। तो इसलिए सालिकीन से गुजारिश है कि वो अपनी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारते हुए जिक्र की कसरत करें। कसरत से जिक्र के बगैर काम नहीं चलेगा। इरशाद फरमाया, या अय्युहल लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो तुम कसरत से अल्लाह को याद करो। जब यूं कसरत से जिक्र करता है इंसान तो फिर उसका दिल मुनव्वर होता है, दिल बेदार होता है, दिल जाकर शागिर हो जाता है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे पीर हरात उनको कहते थे, हरात एक सूबा है अफगानिस्तान का, वहां वो बुजुर्ग गुजरे तो पीर हरात के नाम से मशहूर हुए। बड़े अजीब अकवाल हैं उनके। फरमाया करते थे अगर बहावा रवि बगसेल बाशी, अगर तू हवा में उड़ता है तो तू एक मक्खी की माने जाए, वबर आब रवि खसे बाशी, तो पानी पे तैरता है तो तू एक तिनके की माने जाए, दिल बदस्तार ताकसे बाशी, तो दिल काबू में कर ले तो कुछ तो बन जाए। तो हवा में उड़ना और पानी पे चलना ये क्या बात हुई, कोई चीज नहीं है। असल चीज ये है कि दिल की गिरह खुल जाए। तो इस बारे में वो फरमाया करते थे कोई नक्शबंदी है, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई सोहरावर्दी है। कोई नक्शबंदी है, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई सोहरावर्दी है। अगर दिल में एक खुदा की याद है तुम सब कुछ हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। अगर दिल में एक खुदा की याद है तुम सब कुछ हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। और वो एक खुदा की याद तो दिल में होती नहीं, वो तो माबूदों से भरा पड़ा होता है। हम हैरान होकर सोचते हैं कि वो काबे को बुतखाना बना दिया, और हम अपने आप के बारे में सोचते नहीं, इस काबे को भी तो हमने बुतखाना बनाया हुआ है, सनम खाना बना, इसकी भी मोहब्बत दिल में, तो इसकी भी मोहब्बत दिल में, तो इसकी भी मोहब्बत दिल में। महाजही तमासिल्लती अंतुम लहा आके, ये क्या मूर्तियां हैं जो दिल में रखी हुई हैं। और हमें ये बुत समझ में नहीं आते, नौजवानों के दिलों में तो कुछ शक्लें बनी होती हैं, फलां की शक्ल का ठप्पा लगा है, फलां की शक्ल का ठप्पा लगा है, ये खुदाई, ये हवाई खुदा है। इसलिए कहने वाले ने कहा कि बुतों को तोड़ तखय्युल के हों के पत्थर के, पत्थर के बुतों को भी तोड़ना पड़ता है, तखय्युल के बुतों को भी तोड़ना पड़ता है, तब जाके तौहीद खालिस नसीब होती है। तो जिक्र की कसरत किए बगैर काम नहीं बनता। जैसे हम चल रहे हैं ऐसे तो 20 साल और भी गुजर गए हमारी जिंदगी, तो रूहानी तरक्की कोई नहीं नसीब होगी। तो जिंदगी की तरतीब को बदलें, वज़ाइफ की पाबंदी करें, औरात की पाबंदी करें, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करें। जब हम अपनी तरफ से पाबंदी करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारे लिए इस्लाह का मामला आसान फरमा देंगे, हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा देंगे। एक नशा सा है जो छाए है तेरे नाम के साथ, एक नशा सा है जो छाए है तेरे नाम के साथ, एक तसल्ली सी भी आए है तेरे नाम के साथ, एक नशा सा है जो छाए है तेरे नाम के साथ। एक तसल्ली सी भी आए है तेरे नाम के साथ, अंबर ओ ऊद लुटाए है तेरी याद जमील, अंबर ओ ऊद लुटाए है तेरी याद जमील, एक खुशबू सी भी आए है तेरे नाम के साथ, एक नशा सा है जो छाए है तेरे नाम के साथ, एक तसल्ली सी भी आए है तेरे नाम के साथ, अंबर ओ ऊद लुटाए है तेरी याद जमील, एक खुशबू सी भी आए है तेरे नाम के साथ, गोया कौनैन की दौलत को समेटा उसने, गोया कौनैन की दौलत को समेटा उसने, दिल की दुनिया जो बसाए है तेरे नाम के साथ, गोया कौनैन की दौलत को समेटा उसने, दिल की दुनिया जो बसाए है तेरे नाम के साथ, है तेरा जिक्र हलावत में कुछ ऐसा के जुबान, है तेरा जिक्र हलावत में कुछ ऐसा के जुबान, एक नया जायका पाए है तेरे नाम के साथ, है तेरा जिक्र हलावत में कुछ ऐसा के जुबान, एक नया जायका पाए है तेरे नाम के साथ, दिल तड़पता है सुने जब भी तेरा नाम कहीं, दिल तड़पता है सुने जब भी तेरा नाम कहीं, आंख भी अश्क बहाए है तेरे नाम के साथ, दिल तड़पता है सुने जब भी तेरा नाम कहीं, आंख भी अश्क बहाए है तेरे नाम के साथ, हमने ये इश्क इलाही का असर देखा है, हमने ये इश्क इलाही का असर देखा है, रूह भी वजद में आए है तेरे नाम के साथ, हमने ये इश्क इलाही का असर देखा है, रूह भी वजद में आए है तेरे नाम के साथ, हश्र क्या होगा भला उनका तेरी दीद के दिन, हाल क्या होगा भला उनका तेरी दीद के दिन, जिनका दिल जोश में आए है तेरे नाम के साथ, हाल क्या होगा भला उनका तेरी दीद के दिन, हश्र क्या होगा भला उनका तेरी दीद के दिन, जिनका दिल जोश में आए है तेरे नाम के साथ, खूब जी भर के जो करता है तेरा जिक्र फकीर, खूब जी भर के जो करता है तेरा जिक्र फकीर, दिल की जुल्मत को मिटाए है तेरे नाम के साथ, खूब जी भर के जो करता है तेरा जिक्र फकीर, सोई किस्मत को जगाए हैं तेरे नाम के साथ, खूब जी भर के जो करता है तेरा जिक्र फकीर, अपनी तस्कीन बढ़ाए हैं तेरे नाम के साथ, एक नशा सा है जो छाए है तेरे नाम के साथ, एक तसल्ली सी भी आए है तेरे नाम के साथ। اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فارحمنا لنكون من الخاسرين مالك ما في عز مسكين بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے دربدر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما رب کریم ہمارے دلوں کو صاف فرما اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما ہمارے قلب کا تصفیہ فرما نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما دینی پریشانیوں کو دور فرما جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا اے مالک سب کی نیک حاجات کو پورا فرما ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے الگ درجات عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ولينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين